Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
और इसलिए इनको कहा गया, इन ज्ञान के साधनों के प्रकाशक वेद तथा वेदांग एवं वेद के द्वारा प्रकाशित प्रतिपादित तपादि साधन उपनिषद के यानी ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा यानी पाद के तरह पाद हैं, ब्रह्म विद्या को सुस्थिर करने वाले हैं। और एक साधन बताया कि सत्यम आयतनम, ये जो सत्य है, यद्यपि तप दम कर्म और इसके बाद में जो इति शब्द है, इससे और साधनों को लेना है तो और साधनों के साथ इस सत्य का भी ग्रहण हो सकता था, लेकिन श्रुति ने विशेष करके सत्य को बाकी साधनों की अपेक्षा अलग कर दिया और ये बताया कि तस्याः सत्यम आयतनम। उपनिषद शब्दित ब्रह्म विद्या का आयतन है, आश्रय है कौन? सत्य। जिसके जीवन में सत्य है यानी शरीर इंद्रिय और मन की ऋजुता है, सरलता है, अकुटिलता है, सत्य का अर्थ करते हैं अकुटिलता, वो सत्यवान जो व्यक्ति है उसी के जीवन में आत्मबोध होता है। इसलिए मुंडक उपनिषद में कहा जाता है कि सत्ये न लभ्य तपसा हेश आत्मा, सम्यक ज्ञानेन नित्यम ब्रह्मचर्येण। तो सत्य से इस आत्मा की उपलब्धि होती है, सत्ये न लभ्य तपसा हेश आत्मा। और सत्यमेव जयते, ये श्रुति कहती है कि जो आप यानी साधक भी जय प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। किस पर जय प्राप्त करनी है उसे? ये जो बंध है इसे पराजित करना है, निवृत्त करना है और बंध से मुक्ति पानी है। तो बंधन को पराजित करना है, भ्रम को निवृत्त करना है, हटाना है और मुक्ति पानी है बंध से। तो आवश्यकता है बंध को आप जिससे जीत सकें, बंध को पराजित कर सकें उस साधन की। तो हमेशा विजयी कौन होता है? तो श्रुति कहती है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय हुआ करती है, सत्यवान ही जीतता है। और जिसके जीवन में अंधित है वह शुरू में कुछ समय भले ही शक्तिशाली सा प्रतीत हो लेकिन अंतिम परिणाम सत्य के पक्ष में ही जाता है। तो सत्य में वह जयते। इसलिए ज्ञान के अनेक साधनों में सबसे उत्कृष्ट साधन बताया जाता है सत्य को, सत्यम आयतनम। तो सत्य को श्रुति उपनिषद शब्दित ब्रह्म विद्या का आश्रय बता रही है, ब्रह्म विद्या टिकती है सत्य में। इसलिए तैतृय उपनिषद में शिक्षावल्ली में जब 12 वर्षों तक गुरुकुल में रख करके अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन गुरु कराते हैं, गुरुकुल पद्धति के अनुसार पहले ऐसा होता था, और जब समावर्तन संस्कार होता था तो 12 वर्षों तक जो वेदों की शिक्षा आचार्य ने शिष्य को दी है समावर्तन संस्कार के समय वो सारे 12 वर्षों तक दी गई शिक्षा का सार एक दिन बताते हैं वे अपने शिष्य को पास में बिठा करके, और उसमें यही उपदेश देते हैं कि सत्यम वद, पहला उपदेश, यानी 12 वर्षों तक खूब विस्तार से शिक्षा दी। अब समावर्तन संस्कार के बाद में उसे आना है व्यावहारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में आना है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें व्यावहारिक जीवन जीते समय एक साधन को अपनाना है, और वो साधन है सत्यम वद और धर्मं चर दूसरा। तो सत्य को अपना ले, सत्य को यदि न छोड़े तो हमारे प्रातस्मरणीय गुरुदेव महाराज श्री जी कहते थे कि सत्य तो एक प्रकार से सभी साधनाओं का इंजन है। जैसे ट्रेन में अनेक डिब्बे होते हैं, जितने भी 10-20-25 डिब्बे हैं, 100 भी डिब्बे हो जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, और उसमें आप बैठे रहें और इंजन न लगे और इंजन न चले, तो जहां डिब्बे हैं वहीं पर आप जीवन भर वहीं रहेंगे। और यदि इंजन लगा और चल रहा है तो सारे के सारे डिब्बे जिस गति से इंजन चल रहा है उसी गति से चलेंगे और गंतव्य तक पहुंचेंगे भी। ऐसे ही ये सारे साधनों के इंजन के तरह इंजन है, गति देने वाला है सब साधनों को सत्य। इसलिए तो शिक्षावली में समावर्तन संस्कार के समय आचार्य सबसे पहले कहते हैं कि सत्यम वद, तुम्हारे जीवन में सत्य भाषण होना चाहिए। यदि सत्य को अपना लिया तो बाकी धर्मंचर ये आ ही जाता है। जब व्यक्ति ये समझता है कि हमको सत्य ही बोलना है, सत्य का ही आचरण करना है, और अंधित को अपनाना ही नहीं, मिथ्या को अपनाना ही नहीं, झूठ बोलना ही नहीं, तो ये जिसके जीवन में आ गया तो फिर वह धर्म मार्ग पर ही चलेगा, धर्माचरण ही करेगा, उसके जीवन में तप ही रहेगा, उसका मन निग्रहित ही रहेगा, इंद्रियों का निग्रह होता ही रहेगा, बाकी सब साधन उसके जीवन में आ ही जाता है। इसके लिए कहा यहां पर श्रुति ने भी सत्य को महत्व देने के लिए ये कहा कि सत्यम आयतनम, ब्रह्म विद्या का आयतन है सत्य। और इन साधनों को एक जन्म में दो जन्म में अनुष्ठित करने मात्र से अंतःकरण संस्कारित होगा ऐसा नहीं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते भगवान कहते हैं, अनेकों जन्मों की साधना जिसके जीवन में है। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्कर कहते हैं न कि मुक्तिर न शतकोटि जन्म कृतैर पुण्यैर विना लभ्यते, यानी असंख्य जन्मों तक की हुई साधना के बिना अंतकरण में जो सूक्ष्मतम दोष है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक, यह निवृत्त नहीं होता है। इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हमने अनात्मा शरीरादि में ही आत्माभिमान करके इनके अनुकूल पदार्थों को प्राप्ति के लिए और इनके लिए जो प्रतिकूल पदार्थ हैं उनकी निवृत्ति के ही जो साधन है उनको अपनाया हुआ है, और उन साधनों का ही हमारी बुद्धि में संस्कार पड़ा हुआ है। वह संस्कार सहसा मिटता नहीं है, निवृत्त नहीं होता है। स्वभाव को बदलने के लिए बहुत ही अधिक प्रयत्न करना होता है और लंबे समय तक करना होता है। और जिन साधनों को हमने संसार अंतकरण के संस्कारक साधनों के रूप में अपनाया है, उन साधनों के प्रति महत्व बुद्धि भी रखनी पड़ती है। आदर, दीर्घकाल और निरंतर इन साधनों को साधक अपनाता है तो उन साधनों से अंतकरण ब्रह्म विद्या धारण करने योग्य बन जाता है, संस्कारित होता है। और ऐसा जिसने अपने अंतकरण को इन सब साधनों को अपना करके ब्रह्म ज्ञान धारण करने योग्य बना लिया है, ऐसे साधकों को, सुसंस्कृत साधकों को शुद्ध अंतकरण से, फिर जो वस्तु जैसी है ऐसी ही प्रतीत होती है। जैसे शुद्ध दर्पण के सामने, साफ दर्पण के सामने, शीशे के सामने आया हुआ जो पदार्थ है, उस पदार्थ में जो गुण दोष है उन गुण दोषों को दर्पण दिखा देता है। यदि चेहरे पे दाग है तो दाग भी दिखा देगा, कोई दाग नहीं है सर्वथा निर्दोष मुख है तो उसे भी दिखा देता है दर्पण। ऐसे शुद्ध अंतकरण, फिर जो वस्तु जैसी है ऐसा ही निर्धारण कर लेता है। शुद्ध अंतकरण में नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाता है। नित्य तो एक परमात्मा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां त्रिकाला बाधित वस्तु के रूप में एक परमात्मा को बता रही है और परमात्मा से अतिरिक्त बाकी सारी की सारी वस्तुएं अनित्य दोष से दूषित है, उसमें अनित्यता है, साधन पारतंत्र है और सभी अनात्म पदार्थों में अनित्यता रूपी दोष प्रतीत होता है तो इसे कहा जाता है फिर नित्यानित्य वस्तु विवेक। अनित्य संसार अनित्य के रूप में ही भास रहा है बुद्धि में तो यह निश्चित नियम होता है कि जो अनित्य वस्तु है, टिकने वाली नहीं है, इस रूप में आपको ज्ञात हो जाए तो वह उसे अपनाने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, मन की प्रवृत्ति रुक जाती, वहां से मन निकल जाता है, उसमें आसक्ति नहीं होती, उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है मन। तो इस प्रकार तो अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य होगा, नित्य वस्तु जो परमात्मा है उसको प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होगी, उसे ही मुमुक्षा कहते हैं। और फिर अनित्य वस्तु के प्रति जो राग द्वेष थे, उन्हीं राग द्वेष के कारण मन उनके प्रति आकर्षित होता था, अशांत रहता था, अशांत था, उसमें शम नहीं था, वो शमादि भी आ ही जाते हैं। शांत मन को किसी इंद्रियों के विषय रूपादि की अपेक्षा नहीं है तो शांत मन अपने अधीन रहने वाली चक्षुरादि इंद्रियों को, रूपादि विषयों को लाने के लिए प्रेरित भी नहीं करेगा। तो रूपादि विषयों के ओर चक्षुरादि इंद्रियों की दौड़ शांत हो जाएगी तो ऐसे शांत इंद्रिया उन्हें कहा जाता है दांत, इंद्रियों का दम भी आ ही जाता है। तो इस प्रकार शमदमादि साधनों से संपन्न हुआ जो व्यक्ति है उसे शास्त्र कहता है तुम्हें अपेक्षित है मोक्ष, मोक्ष है, ब्रह्म भावश्च मोक्ष कहा जाता है, ब्रह्म का स्वरूप ही, और उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या करो तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्यकृतः कृतेन त तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम के अनुसार जब ये नित्यानित्य वस्तुवेक हुआ, अनित्य से वैराग्य को प्राप्त हुआ, तो ये निश्चय कर ले कि कर्म से अकृत जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो नित्य जो मोक्ष है उस मोक्ष की उपलब्धि तो होती है ज्ञान से, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, और वह ज्ञान प्राप्त होता है जैसे कि केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रथम मंत्र से यहां का इसी ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न हुआ जिज्ञासु आचार्य के पास जाता है और ऐसे आचार्य के पास जाकर के ब्रह्म जिज्ञासा करता है और ब्रह्म जिज्ञासु की ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करने वाले वेद वाक्यों से जब आचार्य उपदेश करते हैं तत्त्वमशादी वाक्यों का, तो तत्त्वमशादी वाक्यों से शुद्ध अंतकरण वाले तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध हो जाता है। उसे इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में श्रुति बता रही है, चौथे खंड का अंतिम मंत्र है नवम मंत्र। इस प्रकार ये तपादि साधनों को अनेकों जन्मों से अपना करके जो शुद्ध चित्त हुआ है और नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षा इन चार वेदांत अधिकार वेदांत विचार का अधिकार प्राप्त कराने वाले साधन चतुष्टय से संपन्न हुआ, वेदांत का अधिकारी बना और वेदांत का अधिकारी बन करके वेदांत के परम तात्पर्य का आत्मरूप से अनुभव करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर के अपनी ब्रह्म जिज्ञासा रखी आचार्य के सामने जिसने, और आचार्य ने भी दया करके इसकी ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्म का उपदेश कर लिया और ब्रह्मोपदेश से मान लो कि ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली जिसने, उसे इस ब्रह्म विद्या के फलस्वरूप क्या मिलेगा? अनेकों जन्मों से जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा था साधक बन करके तपादि, और फिर आचार्य के पास गया और तत्त्वमशादि महावाक्यों का उपदेश प्राप्त करके अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, तो यह साक्षात्कार करेगा क्या, इससे क्या होगा? तो जैसे ही साक्षात्कार होगा तो आपके आभानापादक आवरण की निवृत्ति होगी, अविद्या की निवृत्ति होगी। जिस अनादि अविद्या में सो करके अनेकों प्रकार का स्वप्न, ये जागृत अवस्था एक प्रकार से स्वप्न की तरह स्वप्न ही है, कभी हम मनुष्य हैं इस रूप में स्वप्न देखते हैं तो इसको छोड़ करके इस शरीर को, कभी हम देवता हैं तो कभी पशु पक्षी हैं इस रूप में 84 लाख प्रकार की योनि में भटक रहे हैं, ये एक स्वप्न है। अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके अनादिकाल से यह जीव अनेकों प्रकार के जन्मों की जो अनुभूति कर रहा है ये स्वप्न देख रहा है, और जब अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हो जाएगा यानी स्वरूप में जग जाएगा, तो जगते ही अज्ञान रूपी निद्रा खुल जाएगी, तो अज्ञान रूपी निद्रा से भासने वाला जो स्वप्न है, जो नहीं सोएगा जगता ही रहेगा उसे स्वप्न नहीं आएगा ना, तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान हुआ का मतलब जागृत अवस्था आ गई, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया, परमार्थ स्वरूप में जग गया, तो उसे परमार्थ स्वरूप के अज्ञान रूपी निद्रा में सो करके अभी तक जो स्वप्न दिख रहे थे वो स्वप्न दिखेंगे नहीं, स्वप्न निवृत्त हो जाएंगे। और जगने के बाद जैसे आप ये देखते हैं कि हम जो हैं उसी को देखते हैं, स्वप्न के पदार्थों को नहीं देखते हैं, ऐसे ये सारा का सारा द्वैत स्वप्न है। यह द्वैत मिटेगा और अद्वैत की अनुभूति होगी। जो आपका अपना परमार्थ स्वरूप है वही निरंतर स्फुरित होता रहेगा, वह निरतिशय आनंद स्वरूप है, उसी में आप प्रतिष्ठित होंगे। इसी को नवम मंत्र में बताया जा रहा है कि यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। कि जो अधिकारी एताम यानी केने शितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रथम मंत्र से जिस ब्रह्म विषय जिज्ञासा कर दी थी, जिस ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा, जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की इच्छा शिष्य ने रखी थी आचार्य के सामने, और शिष्य की इस ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, यहां से लेकर के द्वितीय खंड के कुछ मंत्रों तक यश्यामतम तस्यमतम मतम यश्य न वेदसः, यहां तक के मंत्र तक ब्रह्म विद्या जो बताई गई वह ब्रह्म विद्या यहां पर एताम शब्द से ग्राह्य है। वह इन तपादि साधनों का फलभूत ज्ञान है। तपादि साधनों का अनुष्ठान कर दिया, उससे अंतकरण संस्कारित हुआ, और संस्कारित शुद्ध अंतकरण से वास्तविक जिज्ञासु बन करके ब्रह्म विद्या के आचार्य के पास जा करके ब्रह्म विद्या के आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। वह साक्षात्कार है येताम इस शब्द से ग्राह्य उपनिषद शब्द का अर्थभूत ब्रह्म विद्या, और उसे वेद यानी प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है। जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार प्राप्त हो गया है जिसको, उसे क्या होता है तो कहते पापमानम अपहत्य। पाप है दुख का साधन, जिससे आपको दुख हो रहा हो उसे कहा जाता है पाप, और आपके दुख का कारण दुख है जन्म मृत्यु। जन्म से भी, जन्म के समय भी खूब दुख होता है, मृत्यु भी दुख है, जन्म मरण यही वास्तविक दुख है, और इस जन्म मरण का जो हेतु होगा उसे कहा जाएगा पाप। जन्म मृत्यु का हेतु कौन है? आप अजन्मा होते हुए भी शास्त्र कह रहा है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते मृते वा कदाचित। जन्म मृत्यु आदि छह भाव विकारों से रहित आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के निर्विकार स्वरूप का अज्ञान अविद्या, और इस अज्ञान मात्र से भी जन्म नहीं होता। सुसुप्ति में तो अज्ञान ही है, लेकिन ये अज्ञान पूर्वक फिर जो विपरीत ज्ञान है जिसमें जन्मादि छह भाव विकार हैं, अनात्मा कार्यक्रम संघात में, उसमें तादात्म्य अभिमान, ये है कार्य विद्या अध्यास। इन दोनों को भी अविद्या शब्द से कहा जाता है। अपने निर्विकार स्वरूप का अज्ञान और इस अज्ञान का कार्य जो अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, ये दोनों हैं अविद्या। और जब जन्म मृत्यु रूपी विकार से युक्त शरीर आदि को ही मैं मान लेंगे तो निश्चित ही जन्म और मृत्यु की अनुभूति होगी, अविद्या के कारण हो रही है। और केवल अविद्या होने मात्र से भी जन्म नहीं होता, उस अविद्या के सहयोगी है जन्म मृत्यु संपादन करने के लिए काम और कर्म। काम कहते हैं इच्छा को, वासना को, और कर्म है जो संसार अंतःपाती इस लोक के या परलोक के भोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए कर्म। ये तीनों हैं दुख के कारण। ये तीनों जब तक रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलना संभव नहीं है, तो इसलिए इन तीनों को कहा जाता है पाप। अपहत्य पापमानम, यहां पर पाप शब्द का अर्थ है, पापमा का अर्थ है आपके दुख के, जन्म मृत्यु रूपी दुख के हेतुभूत अविद्या काम कर्म, ये दुख के बीज हैं। और इनको अपहत्य, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होते ही आपके निर्विकार स्वरूप का अज्ञान, ये अज्ञान रूपी अंधकार को ये ब्रह्म विद्या दूर कर देगी। और फिर कोई कामना नहीं रहती, अहम जितनी भी कामना है वह अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान मूलक है। अज्ञान निवृत्त हुआ तो अज्ञान का कार्य अनात्मा में आत्माभिमान भी नहीं रहेगा, वो निवृत्त होगा। और वह निवृत्त हुआ तो फिर ये जो है काम यानी इच्छाएं वो समाप्त होती हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अश्य रिधि श्रिता, यह मंत्र ही बताता है कि ब्रह्म ज्ञानी की कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, यह मुंडक मंत्र ही बता रहा है कि परमात्मा का ज्ञान अविद्या को निवृत्त करता है, वासनाओं को समाप्त कर देता है, और जन्म मृत्यु के हेतु हुत अभी तक आपने किए हुए जो कर्म है जिनका फलोपभोग नहीं हो पाया उनको समाप्त कर देता है। और ज्ञानोत्तर काल में होने वाला जो उपाधि से कर्म है उस कर्म को ज्ञानी के साथ जुड़ने नहीं देता ज्ञान, तो पापमानम अपहत्य ये हुआ, आपके जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का यह निवर्तक बनेगा ब्रह्म साक्षात्कार। यह अहम वृत्ति अज्ञान को, कामनाओं को और कर्म को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाती है। और उस समय फिर आप स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो स्वर्गीय लोके प्रतिष्ठति, अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार जिसको हुआ उसे यह साक्षात्कार स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित करता है। स्वर्गलोक कौन सा है? तो स्वर्गलोक जो प्रसिद्ध स्वर्गलोक है वो नहीं, उस स्वर्गलोक को हटाने के लिए यहां पर एक विशेषण है अनंते स्वर्गीय लोक है। इंद्रादि देवता जिस स्वर्गलोक में रहते हैं वह स्वर्गलोक तो अंतवान है, विनाशी है, क्षिणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति कहा जाता है। यह एक अनंत स्वर्गलोक है का मतलब दुख रहित सुखात्मक है, वो है ब्रह्म ही। यहां स्वर्गलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्म, वह अनंत है, विनाश रहित है और सबसे व्यापक है, इसलिए जय कहा गया महान है। ऐसा जो अविनाशी सुख है उस अविनाशी सुख में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अविनाशी सुख है यौवय भूमा तत्सुखम के अनुसार भूमा शब्दित ब्रह्म, ब्रह्म रूप में अवस्थित होते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि श्रुतियां ज्ञान का फल जो ब्रह्म भाव की प्राप्ति बता रहे हैं श्रुति वाक्य, वही यहां पर स्वर्गलोके प्रतिष्ठति इस वाक्य से ज्ञान का फल बता ब्रह्म रूप से अवस्थान। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।